व्यवस्था विवरण अध्याय 32। ये वो भजन है जो मूसा ने इसराइल को सिखाया और सबसे पहला रॉक सॉन्ग बना। ये भजन एक चट्टान का विवरण देता है। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। व्यवस्था विवरण 32:3-4 पद। ये भजन परमेश्वर को चट्टान घोषित करते हुए आरंभ होता है। तब उसके काम, उसकी विधियों की, उसके न्याय की, उसके सत्य की और उसकी धार्मिकता की घोषणा करता है। परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्ध लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वो तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वो तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज बाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इसराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज बाग है। व्यवस्था विवरण 32:5-9 पद। पद 11 में एक बड़ी आकर्षक उपमा दी गई है। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। व्यवस्था विवरण 32:11-12 पद। ये परमेश्वर का बड़ा ही आकर्षक वर्णन करता है कि वो एक उकाब का सा है। उकाब अपने घोंसले को तोड़ देता है। उसकी मादा जब अपने चोचलों को उड़ाना सिखाती है, तब वो अपना घोंसला तोड़ देती है। ये घोंसले चट्टानों पर बहुत ऊंचाई पर होते हैं। जब वो देखती है कि अब उसे चोचलों के उड़ने का समय आ गया है और उन्हें अधिक समय घोंसले में नहीं रहना है, तब वो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देती है और देखती रहती है कि वे चट्टान से टकरा न जाए। ऐसी स्थिति में वो तुरंत उड़कर आती है और उनके नीचे आकर उन्हें परों पर उठा लेती है। ये उनके साथ कठोरता का व्यवहार है, परंतु उन्हें उड़ना सिखाने का दूसरा रास्ता है ही नहीं। परमेश्वर भी हमें उसकी संगति और सहभागिता में ऐसे ही लेकर चलता है। हमारे लिए ये स्वाभाविक है कि किसी विशेष परिस्थिति और अवस्था में रहने लगे और निष्क्रिय हो जाए, तब परमेश्वर हमारे घोंसले को हिलाना आरंभ कर देता है। हम तो यही सोचते रहते हैं कि मेरी नौकरी पक्की है, परंतु मेरी नौकरी तो चली गई। परमेश्वर तू क्या कर रहा है? वो आपको उन चोचलों के सदृश उड़ना सिखाता है। आप नीचे चट्टानों को करीब आते देख उनके उन चोचलों की तरह चित्कार मारने लगते हैं कि आप नाश होने वाले हैं, कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। उसी समय परमेश्वर आपको परों पर उठा लेता है और आप परमेश्वर की योजना को उभरते देखने लगते हैं। एक दिन मैं एक पुरुष के साथ भोजन हेतु रेस्तरां में गया। वो यहां एक विशाल निकाय का अध्यक्ष है। 13 साल पहले उसकी नौकरी चली गई थी। उसने मौत की धमकी के कारण ट्रांसफर मांगा था, परंतु उन्होंने उसे ट्रांसफर नहीं किया। अतः उसने कहा, या तो मुझे ट्रांसफर दो या नौकरी से निकाल दो। उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने प्रभु से कहा, प्रभु अब मेरा क्या होगा, प्रभु ये क्या हो रहा है। वो कुड़कुड़ाने और चित्कारे मारने लगा। वो किसी और निकाय में विक्रेता की नौकरी करने लगा। उसका वहां प्रमोशन भी हो गया। एक दिन मालिकों ने उस निकाय को बेच देने का निर्णय लिया। उस समय तक ये व्यक्ति उसे खरीदने की स्थिति में था, अतः उसने उसे खरीद लिया। आज वो उस निकाय का अध्यक्ष है। परमेश्वर के मन में उसके लिए सदैव यही योजना थी। वो जब तक नौकरी करता रहा, वो दूसरी नौकरी देखता ही नहीं था, जबकि परमेश्वर ने उसके लिए ये स्थान रखा हुआ था। अब परमेश्वर उसे यहां कैसे लाए? अब जब नौकरी चली गई तो वो क्या करता? उसने नौकरी की खोज की, अब परमेश्वर उसे लेकर चल सकता था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम परिस्थितियों में सुरक्षित होकर उस योजना से निश्चिंत हो जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर घोंसले को तोड़ देता है और हम सोचते हैं कि हमारा नाश हो गया, परंतु परमेश्वर आकर हमें परों पर उठा लेता है। अब हमारा विकास होने लगता है। इस प्रकार हम परमेश्वर में भरोसा और निर्भरता सीख लेते हैं। हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है और हम चट्टानों पर उड़ना सीख लेते हैं। इस प्रकार उकाब की उपमा द्वारा वो परमेश्वर की समूची योजना का विवरण देता है कि एकमात्र परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और उसके मन में अन्य देवता नहीं था। परमेश्वर उसे पृथ्वी के ऊंचे स्थानों में लेकर गया कि वो भूमि की विपुलता से खाए। उसने उसकी अगुवाई की कि वो चट्टान में से शहद निकाल कर खाए और चट्टान में से तेल निकाले, परंतु उन्होंने उसकी मुक्ति की चट्टान को अधिक सम्मान नहीं दिया। परंतु यशुरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हृष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी सा छा गया। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराए देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। व्यवस्था विवरण 32:15-17 पद। पौलुस कहता है कि मूर्तियों को चढ़ावा देने का अर्थ है शैतान को बलिदान चढ़ाना। इस युग का विश्वास ये था, इन देवताओं की मूर्तियों में दुष्टात्मा वास करता था। ये अति सत्य कथन हो सकता है और मैं इसमें संदेह भी नहीं करूंगा। अतः दुष्टात्माएं उनसे संबंधित थी और जो मूर्तियों को चढ़ावा देते थे वे वास्तव में शैतान को चढ़ावा देते थे। इस कारण किसी मनुष्य को धर्मी कहना और ये कहना कि परमेश्वर उसकी भक्ति का वरदान उसे देगा, कि परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा और उसकी रक्षा करेगा, ये मूर्खता भरी बात है। वो निष्ठापूर्वक शैतान की उपासना करता है, अतः परमेश्वर उसे वरदान देगा। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। व्यवस्था विवरण 32:18 पद। मूसा का ये भजन बड़ा ही अर्थपूर्ण भजन था और मुझे अचंभा होता है कि वे लोग उसे कंठस्थ भी कर गए। परमेश्वर उनसे कहता है कि उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा करके उसके क्रोध को भड़काया है, इसलिए मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुर्बल हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूलि पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। व्यवस्था विवरण 32, 23 और 24 पद। मेरी अपनी राय तो यह है कि वो जर्मनी में किए गए यहूदी नरसंहार की भविष्यवाणी है। उनका वहां जलाया जाना इस भजन में दिया गया है। जब उन पर विपत्तियां आए तब उन्हें ये भजन गाना चाहिए था कि वे जाने क्यों उन पर वे विपत्तियां आई। आज आप किसी यहूदी से बात करेंगे तो कहेंगे कि वो एक नास्तिक जन है। क्यों? क्योंकि वो कहता है, जब मेरा माता पिता या दादा दादी जर्मनी में भट्टियों में जलाए गए थे तब परमेश्वर कहां था? यदि वे इस भजन को गाते रहते तो जान जाते कि इन विपत्तियों के आने का कारण क्या था। उनके द्वारा परमेश्वर का त्याग ही वो कारण था कि परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया था। परमेश्वर कहता है, मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। व्यवस्था विवरण 32, 26 और 29 पद। ओह, परमेश्वर की इच्छा कि उसके लोग बुद्धिमान बने, कि अपनी जीवन शैली के परिणाम को समय से पहले देख लें। परमेश्वर मनुष्य की अज्ञानता तथा मूर्खता के बारे में रोता है। ओह, केवल वे जान पाते कि किस प्रकार की जीवन शैली का क्या परिणाम होता है। यदि उनकी चट्टान ही उनको बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में न कर देता। व्यवस्था विवरण 32 का 30 पद। यदि परमेश्वर आपके संग होता तो ऐसे क्यों होता? आप देख नहीं पाते कि ये आपके विरुद्ध परमेश्वर का हाथ था, क्योंकि बैरी की चट्टान हमारी चट्टान किसी नहीं है। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। व्यवस्था विवरण 32, 32 और 33 पद। तब परमेश्वर ने कहा, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। ये उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 32 का 35 पद। जोनाथन एडवर्ड्स ने अपने भाषण में ये पद मुख्य पद रखा था, क्रोधी परमेश्वर के हाथ में पापी जन। उसने कहा, एक पापी इस मनुष्य के सदृश है जो अग्नि कुंड पर बर्फ की सिल्ली रखकर चल रहा है। आपका पांव इतना अधिक अनिश्चित है कि पता नहीं कब फिसलकर आग में गिर जाए। मेरे विचार में ये उपदेश कलीसिया के इतिहास में बहुत प्रभावी रहा था। जोनाथन एडवर्ड्स की आंखें खराब होने के कारण उसने इस उपदेश को लिखकर पास से देखकर पढ़ा था। जब वो इस उपदेश को पढ़ रहा था तब पवित्र आत्मा ने श्रोताओं को ऐसे कायल किया कि लोग रेंगते हुए आगे आने लगे और परमेश्वर से दया की भीख मांगने लगे। यदि आपको दिल दहलाने वाला प्रकाशन पढ़ना हो तो आप जोनाथन एडवर्ड्स का क्रोधी परमेश्वर के हाथ में पापी जन अवश्य पढ़े। परमेश्वर के इस प्रभावशाली सेवक के उपदेश का आधार पद यही था। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन उनमें से कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वो कहेगा, उनके देवता कहां है, अर्थात वो चट्टान कहां जिस पर उनका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाक मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूं। व्यवस्था विवरण 32:36-39 पद। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या परमेश्वर लोगों को रोगी बनाता है? परमेश्वर यहां कहता है कि वो अपने विभिन्न उद्देश्यों के निमित्त ऐसा करता है। वो तो कहता है कि वो कभी कभी मनुष्य को घायल भी करता है और कभी कभी जान से भी मार डालता है, वो जीवित भी करता है। आज कुछ शिक्षक इस सत्य का इनकार करें, परंतु यहां ये लिखा है, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर की ओर उठाकर कहता हूं, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं, सो यदि मैं बिजली की तलवार पर सन धर कर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपनी तीरों को लहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वो लहू मारे हुए बंधुओं का और वो मांस शत्रुओं के प्रधानों के शीश का होगा। व्यवस्था विवरण 32:40-42 पद। परमेश्वर आगे आने वाली विपत्तियों के विषय में कहता है, वो भजन उन्हें गाना है जिससे कि विपत्तियों के आने पर वे उनके आने का कारण जान पाए। तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूं, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके, अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालों को दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। व्यवस्था विवरण 32:46-47 पद। आपका मन उस पर लगाओ, वो व्यर्थ की बात नहीं है, इसमें आपका जीवन है। ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, ये कोई छोटी बात नहीं है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए व्यर्थ लाभ नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ के नबो नाम चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूं उसे देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इसराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। व्यवस्था विवरण 32:48-51 पद। अब मूसा का समय आ गया है, होर पहाड़ पर चढ़ जा कि वहां तू मर जाए, क्योंकि तूने मरीबा के सोते पर इन लोगों के सामने मुझे अनुचित ठहराया था। मूसा को परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने का कैसा कठिन उत्तरदायित्व सौंपा गया था। मरीबा के सोते पर उसकी चूक ने उसे प्रतिज्ञा के देश में जाने से वंचित कर दिया था। हम भी इस संसार में परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। ये भी एक बड़ा कठिन उत्तरदायित्व है। परमेश्वर चाहता है कि आप इसका प्रतिनिधित्व या गवाही यथोचित रूप से करें। ये एक भयावह उत्तरदायित्व है। परमेश्वर हमारी सहायता कर,